ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र मणि राजेश से समाचार सुनिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। सहकारिता के माध्यम से संचालित यह सेवा उबर और ओला के मॉडल पर काम करेगी। लोकसभा में श्री शाह ने कहा कि यह कदम सहकार से समृद्धि के अनुरूप उठाया गया है।
मोदी जी ने जो नारा दिया है सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो टू व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और फोर व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा।
लोकसभा में आवज्रन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है। विधेयक का उद्देश्य आवज्रन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। कानूनों की बहुलता और ओवरलैपिंग से बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि जनवरी 2024 से इस वर्ष जनवरी तक भारत बांग्लादेश सीमा से 2600 बांग्लादेशी अप्रवासियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। राज्यसभा में वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक संख्या 3/2025 पर बहस जारी है। वित्त विधेयक का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करना है। लोकसभा में विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा कि देश में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल का खर्च बढ़ रहा है। बहस जारी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कांग्रेस के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर कथित रूप से आक्षेप लगाने का आरोप था। इसे कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश गृह मंत्री की टिप्पणी पर लाए थे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का नियंत्रण एक परिवार ने किया। प्रस्ताव का खंडन करते हुए सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इसमें किसी तरह का विशेषाधिकार हनन नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हुर्रियत से जुड़े दो और गुटों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी गुटों तहरीकी इस्तेकलाल और तहरीक ए इस्तिकामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में भरोसा जताया है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अलगाववाद अंतिम सांसें ले रहा है और एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आज विश्व में 5G का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 11 लाख करोड़ रूपये का निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप जारी करने की घोषणा की गई है। भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा नेता अनिल कुमार महतो उर्फ टाइगर की दिन दहाड़े हत्या के खिलाफ आज रांची बंद का आह्वान किया था। कई सामाजिक संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया। रक्षा राज्य मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान और न्याय दिलाने के उनके प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने मतुआ धर्म महामेला 2025 की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मतुआ समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज शाम दिल्ली में भव्य समारोह के साथ होगा। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण कर रहा है। समारोह में खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी शामिल होंगी। 8 दिन की इस चैंपियनशिप में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावरलिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस में 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 7वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।